हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा। तो अभी हम आज के 22 जनवरी के दिन सब लोग हम देहू में आए हैं, श्री क्षेत्र देहू। ये जो देहू क्षेत्र है ये इंद्रायणी के नदी के किनारे में बसा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं और उसमें से 3 मेन पर्वत के सान्निध्य में ये देहू धाम बसा हुआ है। एक पर्वत है भंडारा, एक पर्वत है गोराडेश्वर और एक पर्वत है भामचंद्रनाथ। तो ये 3 बहुत सुंदर पर्वत है और इन 3 सुंदर पर्वतों पर तुकाराम महाराज ने अपना भजन कीर्तन एकांत भजन भी किया हुआ है। तो ये जो इंद्रायणी नदी है इसका उगम लोनावला में होता है और केवल 50 मील चलती है ये। 50 मील चलने के बाद में भीमा नदी में ये इंद्रायणी नदी मिल जाती है। लेकिन इस नदी के किनारे क्योंकि देहू बसा हुआ है और तुकाराम महाराज का यहाँ जन्म हुआ है और तुकाराम महाराज का जीवन यहाँ पर गुजरा हुआ है, इसलिए इंद्रायणी नदी का ये जो किनारा है और देहू क्षेत्र है ये बहुत पवित्र हो गया है और बहुत प्रसिद्ध भी है इसलिए। तो इसमें गुराड़ेश्वर पर्वत, बीच में भंडारा पर्वत और फिर दाहिने हाथ में भामचंद्रनाथ, तीनों में शिवलिंग का मंदिर है। और यहाँ पर बाल्लोबा नाम के बहुत सुंदर भक्त यहाँ पर रहा करते थे, उनकी पत्नी का नाम था कनकाई और ये बचपन से ही बाल्लोबा और कनकाई जो थे पांडुरंग का भजन करते थे। उन्होंने 24 साल तक अपने पिताजी के कहने के अनुसार पति पत्नी ने हर साल पंडरपुर की वारी की, मतलब आषाढ़ी एकादशी के दिन जाना होता है उसको कहते हैं वारी। तो 24 साल तक उन्होंने की, उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। विवाह के 24 साल के बाद में उन्होंने पांडुरंग से प्रार्थना की कि हमें भगवान का भक्त जो है वो बालक के रूप में होना चाहिए। तो 24 साल के बाद में उनको पहला पुत्र हुआ, उसका नाम था सावजी और उसके बाद में सेकेंड पुत्र के रूप में तुकाराम का जन्म हुआ। फिर तीसरा पुत्र हुआ, उसका नाम था कान्होबा। तो ये तीनों पुत्र जो है अपने पिताजी बाल्लोबा और कनकाई के साथ यहाँ पर बड़े हुए और बाल्लोबा जी व्यवसाय से दुकानदार थे, उनका दुकान था और दुकान में धान्य बेचते थे वो। तो गाय भी बहुत थे उनके पास घर पे। तो इनका बचपन जो था बहुत अच्छी तरह से गया, बहुत अच्छी तरह से खेलते गुजरते हुए इनका बचपन गया। और ऐसे भी लिखा है कि घर में दूध दही मक्खन घी बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। ये सब बच्चे लोग जैसे कृष्ण भगवान अपने दोस्तों के साथ में जंगल में जाते थे, गाय चराते थे और बीच में बैठकर लोनी मक्खन फल फूल अचार चटनी भाकरी खाते थे और फिर सब लोग शाम को थक के आकर मंदिर में विठ्ठल के मंदिर में जाकर कीर्तन करते थे हरि कीर्तन। ये उनकी बचपन का दिनचर्या था, दिन भर गाय चराना कृष्ण भगवान की तरह, सब दोस्तों के साथ बैठ के बीच में भोजन करना, फिर शाम को लौट के आना और लौट के हाथ पांव धो के फिर विठ्ठल रखुमाई के मंदिर में जाना और वहाँ पर हरि कीर्तन सुनना। इस तरह से इनका बहुत बढ़िया बचपन गुजरा और दूध दही मक्खन का भोजन करके शरीर भी बहुत पुष्ट बना इनका। फिर 12 साल की उम्र में इनकी शादी हुई रखुमाबाई नाम के औरत के साथ, लड़की के साथ। लेकिन रखुमाबाई को अस्थमा था, वो दिन भर परेशान और बीमार रहा करती थी, इसलिए 6 महीने के बाद में तुरंत उसका दूसरा विवाह माता पिता ने किया। और जो दूसरी पत्नी है उनका नाम है अवलाई यानी जीजाबाई, यानी वो जो आवड़ा भाई बोलते हैं ना हम लोग, वो तुकाराम महाराज की दूसरी पत्नी है। और दोनों पत्नी की संग रह के उन्होंने संसार किया और 13 साल की उम्र में पिताजी ने उनको दुकान का अपना काम सौंप दिया। तुकाराम महाराज ऐसे कहते हैं कि दुकान चलाने में बहुत एक्सपर्ट थे वो, बहुत प्रेम से व्यवहार करते थे, बहुत सारे ग्राहक उनके बन गए थे और धंधा बहुत अच्छी तरह चल रहा था। बहुत वो लोगों को हेल्प भी करते थे, कोई गरीब को फ्री में दान भी देते थे अन्न धान्य का। इस तरह से वो व्यवहार में भी बहुत एक्सपर्ट थे और अपने हर रोज़ शाम को दुकानदारी करने के बाद में माता पिता के साथ घर में बैठकर हरि कीर्तन भी करते थे। तो माता पिता बहुत प्रसन्न हो गए बाल्लोभा और कनकाई कि अपना बेटा अभी न केवल धंधा संभालता है अच्छी तरह से और भगवान का भक्त भी बहुत अच्छी तरह से बन गया है। इस तरह से अचानक इतने दिन उनके जीवन के बहुत अच्छे गए, बहुत कम उम्र में उनको इतना जिम्मेदारी हो गया उनके ऊपर, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया उसको। अचानक 1628 साल में अकाल पड़ता है, वर्षा नहीं होती है, लोगों के खेतों में धान नहीं आता है और उसके बाद में अतिवृष्टि होती है तो सब कुछ नुकसान हो जाता है, अन्न धान्य सब समाप्त हो जाता है। उस समय तुकाराम महाराज अपने दुकान में जितना भी अन्न धान्य है वो सबको फ्री में बांट देते हैं। उसके बाद में रोग राई होती है अतिवृष्टि के बाद में, साथ क्या कहते हैं उसको, एपिडेमिक रोगों की हो जाती है। उसमें तुकाराम के पिताजी, तुकाराम की माताजी, तुकाराम की पहली पत्नी, तुकाराम का पहला लड़का, तुकाराम के बड़े भाई, ये सबका देहांत हो जाता है एक के बाद पिताजी का देहांत के बाद 6 महीने के बाद माताजी का देहांत होता है, फिर बड़े भाई गुजर जाते हैं, फिर पहली पत्नी गुजर जाती है, उसका पुत्र संतोबा गुजर जाता है। तो एक के बाद तुकाराम के ऊपर बहुत बड़ा आघात होता है, वो बहुत दुखी हो जाते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हे विट्ठल, हे पांडुरंग, जो भी आपकी इच्छा है वो मेरे लिए सही है, जो भी आपने मुझे सुख दिया है उसके लिए धन्यवाद है, और जो आपने मुझे जो ये कष्ट हुआ है, जो हमारे रिश्तेदार एक के बाद गुजर गए हैं, वो भी आप ही की इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मेरा परिवार रहे न रहे, लेकिन मेरी भक्ति आपके चरणों में रहनी चाहिए। मेरा शरीर नष्ट हो तो भी चलेगा, लेकिन आपके ऊपर मेरी जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे उनके बहुत सुंदर अभंग यहाँ पर लिखे गए हैं। उसके बाद में मैं आपको संक्षेप बता रहा हूँ, बड़ी लंबी उनके जीवन की बहुत ही प्रेरक कहानी है, लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो इसके पश्चात जब वो उम्र से बड़े हो गए 20 साल के ऊपर, तो भगवान की भक्ति में रममाण होने लगे। हाँ, फिर वो कभी कभी भंडारा पर्वत पर जाकर अकेले में बैठकर भजन लिखा करते थे, बहुत एकांत में बैठकर भजन करते थे। और ये जो उनकी पत्नी थी वो उनको रोटी देने के लिए जाती थी भंडारा में, तो वो उनको कैसे ढूंढती थी, वो जहाँ जाती थी वहाँ का पत्थर उठा के कान पे लगाती थी, उसमें रामकृष्ण हरि का आवाज़ आया तो उस दिशा में जाती थी ढूंढने के लिए। उनको जिस दिशा में जाते थे उस दिशा के पत्थर से भी रामकृष्ण हरि की गूंज निकलती थी। इस तरह से अपने पति को वो खोजती थी और वहाँ रोटी पहुँचाती थी उनको। एक बार भंडारा में जाते जाते ये जो पत्नी थी अवलाई बीजाबाई, उसके पैर में कांटा लग गया, तो पांडुरंग स्वयं वहाँ प्रकट हो गए एक सिंपल आदमी की तरह, और उन्होंने उनके पैर का कांटा निकाला और फिर वो आगे अपने पति से मिलने गई। तो इस तरह से उसके बाद में तुकाराम महाराज ने प्रचार आरंभ किया। प्रचार आरंभ करने के बाद में उन्होंने जो पखंडी लोग हैं, जो नकली लोग हैं, हाँ, दाढ़ी बढ़ा के लोगों को फंसाते हैं, वो भस्म लगा कर ये जाकर लोगों को भहकाते हैं, उन सब पर बहुत ज़ोरदार हमला किया उन्होंने, कि ढोंगवाद पाखंडवाद के ऊपर उन्होंने बहुत हमला किया। इसलिए जो ढोंगी लोग थे, हाँ, ढोंगी भगवान के भक्त थे, संत बने हुए थे, महाजन बने हुए थे, उनको बहुत द्वेष हुआ उनके प्रति, कि उनकी वजह से उनका जो पोजिशन था वो उनका पोल खुल गया, तो सब लोग मिलकर तुकाराम के दुश्मन बने। और तुकाराम के प्रचार करने के बाद में इतना प्रचार हुआ कि घर में जो चक्की पीस रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, जो गोबर का स्लेप कर रहे हैं, जो झाड़ू लोट रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं, जो लकड़ी का काम करने वाला आदमी है, जो पत्थर का काम करने वाला आदमी है, जो लोहे का काम करने वाला आदमी है, जो अपना काम सब करते करते सब लोग तुकाराम के अभंग गाया करते थे, इतना उनका प्रचार गरीब गरीब लोगों के घर तक पहुंच गया था, और लोग घर का हर काम करते हुए रामकृष्ण हरि का जप और तुकाराम महाराज के बने हुए अभंग जो है वो गाते थे। इतना सुंदर गांव में वातावरण हो गया था, उसकी वजह से वेश्याओं का व्यवसाय भी बंद होने को आ गया था, क्योंकि लोग सब सदाचारी बन गए तो वेश्याओं का व्यवसाय भी बंद हो गया, तो गाँव में जो वेश्याएँ थे वो भी उन पर द्वेष करने लगी। तो ये वेश्याएँ और ये जो पखंडी लोग थे ये सब मिल गए, उन्होंने प्लान बनाया कि तुकाराम का जो इतना यश कीर्ति नाम बढ़ रहा है, सब लोग गांव गांव में घर घर में उनका नाम ले रहे हैं, उनका कीर्तन गा रहे हैं, तो उनका यश का खंडन करना चाहिए, इसलिए वेश्या को उसके घर पर भेजते हैं। तो वेश्या घर पर आती है, तुकाराम महाराज कहते हैं कि पराविया स्त्री रखुमाई समान, जो हमारी पत्नी नहीं है उसके अलावा जितनी स्त्रियां इस दुनिया में हैं वो सब रखुमाई समान हैं, वो माता समान हैं। तो तुम्हारी माता है तो हमसे ऐसी अपेक्षा मत करना कि मुझसे विवाह करो, मेरे पति बनो। हम सबके पति और पिता एक ही है, वो विट्ठल भगवान है। इसलिए उसके चरण में प्रणाम करते हो, माता बोल के उनके चरण में प्रणाम करते हैं। तब वो वेश्या को भी समझ में आता है कि ये ऐसे ऐसे कोई गलत आदमी नहीं है, जो ढोंगी लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा है वैसे वो ये व्यक्ति नहीं है, ये भगवान के भक्त हैं। इसलिए वो भी अपना वेश्या व्यवसाय छोड़कर वहीं रह जाती है। जितना धन उसने कमाया होता है वेश्या व्यवसाय करके, वो सब वो ब्राह्मणों में बांट देती है और तुलसी वृंदावन के पास बैठकर अपने सर को मुंडवाकर बाल निकालकर वो संत बनकर वहाँ पर भजन करती है भगवान का। इतना उनका, जैसे अपने संप्रदाय में ठाकुर हरिदास की कथा आती है, सेम कथा इनकी भी ऐसी है। फिर जो लोग पाखंडी लोग थे, नकली ढोंगी लोग थे, उनका फिर भी द्वेष शांत नहीं हुआ कि रे वेश्या को भेजा तो फिर वो वेश्या भी उसको लिए कुछ नहीं कर सकती, तो और उनका द्वेष बढ़ गया। तो उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर जो अधिकारी होते ना शास्त्री जी, राम शास्त्री जी, उनको वो कंप्लेंट करते हैं कि ये जन्म से ब्राह्मण नहीं है, ये जन्म से वैश्य है, दुकानदार है, इसलिए इसको धर्म के अनुसार भगवान के नाम का प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी ये जगह जगह गांव गांव घर घर जाकर लोगों को प्रचार कर रहा है, हरि नाम दे रहा है, दीक्षा दे रहा है, लोगों को अपना शिष्य बना रहा है, लोग उसका भजन गा रहे हैं, तो ये गलत है, इसको रोकना चाहिए। तो राम शास्त्री जी देहू में आते हैं, तुकाराम को बुलाते हैं, तुकाराम को बुलाओ। तुकाराम के तब तक बहुत सारे अभंग लिखे होते हैं, और नकली साधु कुछ ऐसे भी थे जो तुकाराम का लिखा हुआ अभंग है अपने नाम से प्रचार करते थे। हाँ, क्योंकि तुकाराम के अभंग में एंड में होता ना तुका मणे, ऐसा होता है ना, तो उधर वो साड़ो माड़ो भणे ऐसे लिख के अपने नाम पे उसको प्रचार करते थे। इतने ढोंगे लोग थे, तो वो साड़ो माड़ो ही वो राम सरस्वती को बुलाते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि ये सारे अभंग मैंने लिखे हैं और मेरे लिखे अभंग ये तुका मणे करके खुद लिखता है, ऐसे उल्टा बताते हैं उसको। तो राम शास्त्री जी इनके गलत इन्फॉर्मेशन के द्वारा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वो उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुमको प्रचार नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं आपकी आज्ञा मेरे लिए क्या है, मैं क्या करूँ। वो कहते हैं तुम ब्राह्मण नहीं हो इसलिए तुमको अभंग लिखने का भी कोई अधिकार नहीं है, इसलिए सारे अभंग इकट्ठा करो और इंद्रायणी में डुबा दो, ये हमारी आज्ञा है आपके लिए। तो तुकाराम महाराज बड़ी नम्रता से सारे अभंग लेते हैं, और जहाँ पर हम लोग बैठे हैं ये गाथा मंदिर है, ये बिल्कुल इंद्रायणी के किनारे पे है। तो इसी मंदिर के जहाँ मंदिर अभी बंदा है, इसी जगह पर वो तुकाराम महाराज अपनी गाथा लेके नदी में डुबा देते हैं। वो नदी में डुबा देते हैं तो उनके साथ में उनकी पत्नी और दो बच्चे भी आते हैं, और तुकाराम बहुत निराश हो जाते हैं कि ये भी जीवन में क्या अर्थ बचा, जो मैंने लिखा लोगों के कल्याण के लिए वही नदी में डुबाया गया, तो अभी उपवास करके जीवन समाप्त करना ही अच्छा है। इसलिए वो वहाँ पर बैठकर उपवास करते हैं, एक दिन, दो दिन, आठ दिन, दस दिन, 13 दिन तक निर्जला उपवास करते हैं। बच्चे भी भूखे रहते हैं, बच्चे नहीं खा रहे हैं, पत्नी भी नहीं खा रही है, क्योंकि पिताजी उपवास कर रहे हैं, सब लोग बैठ के उपवास करते हैं, मरणासन्न हो जाते हैं एकदम, जैसे मरने वाले हैं। उस समय 13वें दिन में नदी में डुबाए हुए जो ग्रंथ थे अभंग वाले, वो नदी के ऊपर आते हैं बिल्कुल सूखे। इंद्रायणी नदी स्वयं देवी के रूप में प्रकट होती है और वो गाथा जो है अभंग गाथा वो उनके हाथ में लाके देती है। तब जाकर सब गांव जो है उनको मानता है, और वो जो नकली लोग वो भी उनके चरणों में आके गिर जाते हैं कि हमने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, हमने आपके खिलाफ बदनामी का योजना बनाया, हमने वेश्या भेजा आपके पास, फिर भी आप विचलित नहीं हुए, और साक्षात इंद्रायणी नदी ने आपको दर्शन देकर आपकी गाथा जो डुबाई हुई थी उसको बचा के आपके हाथ में दिया। उसके बाद भी तुकाराम महाराज का बहुत प्रचार हो गया। तो इस तरह से हमको पता होना चाहिए कि संत लोगों का जीवन जो होता है वो बहुत कठिन होता है, बहुत कष्ट होता है उसके अंदर। आज हम उनको इतना पूजते हैं, उनके अभंग गाते हैं, उनके अभंग का कीर्तन करते हैं, गांव-गांव में उनके बारे में प्रचार हो रहा है, तुकाराम महाराज का यश और कीर्ति सबको पता है। लेकिन जब तुकाराम महाराज जीवित थे इस समय इस दुनिया में, उस समय 1600-1700 के शतक में बहुत विरोध, बहुत संकट, बहुत कष्ट और बहुत कसौटी उनकी हुई। उस कसौटी के अग्नि से जब वो गुजरे तब उनका जो सोना था वो चमकने लगा और विश्व के सामने वो प्रसिद्ध हो गए कि ये संत है। अगर आप मंदिर में भी गए होंगे, ऊपर देखा होगा, ऐसे लिखा है उधर कि ये तुकाराम महाराज सत्ययुग में प्रहलाद थे और त्रेतायुग में अंगद थे और द्वापर में उद्धव जी थे। वही व्यक्ति कलयुग में तुकाराम के रूप में जन्म लिया है। तो ये संत है, भगवान के दूत हैं जो गरीबों के और गरीब जनता के, अज्ञानी जनता के कल्याण के लिए जन्म लेते हैं। स्वयं कष्ट भोगते हैं, तकलीफ उठाते हैं, कसौटी का सामना करते हैं, लेकिन आम जनता का कल्याण करते हैं। उन्होंने कष्ट सहा इसलिए आम जनता का कल्याण हो गया। तो ये एक जगह है जहाँ पर हम लोग आए हैं जिसका नाम है गाथा मंदिर। और इंद्रायणी नदी तो है ही, यहीं से आगे जाएंगे तो आगे जाकर इंद्रायणी का घाट भी आएगा। उस घाट के पास में वैकुंठागमन मंदिर है। वैकुंठागमन मंदिर का मतलब ये है कि जीवन के अंत में जब तुकाराम महाराज उधर इंद्रायणी के पास उस पिंपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कीर्तन कर रहे थे तो वैकुंठ से गरुड़ जी का विमान आया और वैसे ही कीर्तन करते करते पीठ पर बिठाकर तुकाराम महाराज को गरुड़ जी वैकुंठ ले गए। तो वो जगह है वैकुंठागमन, वहाँ पर तुकाराम जी का मूर्ति है गरुड़ पर बैठा हुआ। गरुड़ जी उनको अपने पीठ पर लेकर वैकुंठ लेके जा रहे हैं। और उनका विशेषता ये है कि जब कोई संत की मृत्यु होती है, कोई किसी का भी मृत्यु होती है, हमारी भी होती है, संत की भी होती है, ये शरीर जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं इसको छोड़ के जाना पड़ता है, आत्मा चली जाती है, शरीर यही रह जाता है। लेकिन तुकाराम जी का विशेषता ये थी कि तुकाराम जी उसी शरीर के साथ में वैकुंठ गए। इसको कहते हैं सदेह वैकुंठागमन। हम सब लोग शरीर छोड़ के फिर हमारी आत्मा वैकुंठ में जाती है। तो उस जगह पर तुकाराम जी का सदैव वैकुंठगमन हुआ है। वो जो वैकुंठगमन की जगह है उसी के पास विट्ठल रखुमाई का मंदिर है जिसमें तुकाराम के 7-8 पूर्वजों तक लोग जो थे, एक उनके पूर्वज थे 8 पीढ़ी पहले वाले विश्वंभर बुआ, उन्होंने उसका मंदिर का निर्माण किया था। तो तुकाराम महाराज के परिवार में ही भक्ति का चलन था, भक्ति का भाव था। और उनके 8 पीढ़ी पहले विश्वंभर बुआ ने, उनके पूर्वजों ने ये विट्ठल रुक्माई मंदिर का निर्माण किया है जिसमें तुकाराम महाराज के पिताजी भी जाया करते थे और बाद में तुकाराम महाराज भी जाया करते थे। और यहीं पर वो बाकी लोग भी कीर्तन करते थे, ये भी कीर्तन करते थे। और फिर उन्होंने उनको उस मंदिर में आने को मना भी किया था कि आप शूद्र हो, आप वैश्य हो, आपको मंदिर में नहीं आना चाहिए, आप बहुत पापी हो, आपने धर्म का भंग किया है, इसलिए मंदिर में आने का भी रोक देते उसको। वही मंदिर है वो। आज हम उस मंदिर में जाएंगे तो उस मंदिर में वो शिला है जिस पर बैठकर उन्होंने 13 दिन का उपवास किया था। और साथ साथ में उस मंदिर में उनकी पालकी भी है जो हर साल आषाढ़ एकादशी के 2 दिन पहले यहाँ से निकलती है, यहाँ से पंढरपुर जाती है। और वही पालकी दीपावली के दिन भी यहाँ से निकलती है, दशहरे के दिन सॉरी, सीमा उल्लंघन करने के लिए। तो वो तुकाराम की पालकी भी उसी मंदिर में स्थित है। उसमें मंदिर में हनुमान जी का मंदिर भी है, प्रभु रामचंद्र का मंदिर भी है और तुकाराम ने उस हनुमान जी और राम प्रभु चंद्र के ऊपर भी अभंग लिखे हुए हैं कि आप लोग, आप तुकाराम महाराज यहाँ कहते हैं कि हनुमान जी आप यहाँ खड़े हो, आप मुझे यहाँ पर भक्ति के मार्ग दिखाने के लिए खड़े हो, इसलिए मैं आपको वंदन करता हूँ कि भक्ति मार्ग क्या होता है, कैसा होता है, उसमें संकट क्या आते हैं, कैसे पार करना होता है, ये समझाने के लिए हनुमान जी आप यहाँ खड़े हो, ऐसे उन्होंने भजन लिखे हैं। तो तीन डोंगर भी यहाँ पर बताया उसका। तो तीनों पर्वत पर तुकाराम महाराज कीर्तन करने को आते थे, इसलिए सारा छोटा सा गांव है ये, बहुत सारे पर्वत इसके अंदर है, छोटा सा गांव है, बहुत छोटी पॉपुलेशन है, नदी किनारा केवल छोटा है, 50 मील में नदी समाप्त हो जाती है, भीमा नदी को मिलती है, लेकिन इतना छोटा समा गांव जो है बहुत प्रसिद्ध हो गया क्योंकि तुकाराम के चरणों का स्पर्श यहाँ पर हुआ है। तुकाराम ने अपने जीवन में जो तपस्या की, जो कष्ट सहे, जो भगवान के नाम का कीर्तन किया, जो अभंग लिखे, वो सभी इसी गांव में लिखे हुए हैं, इसलिए क्षेत्र बहुत पवित्र है। संत के भूमि में आने से हृदय की शुद्धि होती है। जब हम संत जहाँ पर निवास करते हैं, वो संत निवास होने के बाद में, मृत्यु होने के बाद भी उनका निवास वहाँ रहता है। हमारे ठाकुर भक्ति विनोद जी, जो प्रभुपाद जी के गुरु जी के पिताजी हैं, वो कहते हैं कि वैष्णव लोग कभी मरते नहीं हैं, वैष्णव लोग हमेशा जीवित रहते हैं उनकी शिक्षा के कारण। जो लोग वो जो सिखाते हैं वो शिक्षा दे लोगों को देते हैं, जो लिखते हैं, जो उनका उपदेश होता है, उस उपदेश के रूप से ये वैष्णव जन जो है वो हमेशा जीवित रहते हैं। उसी तरह से तुकाराम महाराज जी ने यहाँ निवास किया, जन्म लिया, बचपन गुजरा, विवाह हुआ, व्यवहार किया, दुकान चलाया और अभंग भी लिखे और कीर्तन भी किया और प्रचार भी किया और गरीब जनता का उन्होंने उद्धार किया। इसलिए तुकाराम महाराज यहाँ से वैकुंठ गमन होने के पश्चात भी आज यहाँ भी उपस्थित हैं अपने अभंगों के माध्यम से। हाँ, अपने अभंगों के माध्यम से उन्होंने बहुत कठोर शिक्षा दिया है। किसी का जो ढोंगी लोग हैं उनके लिए बहुत कठोर वचन उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि मऊ मेणा होनी वैष्णवामी कठिन वज्रा सही भेदू ऐसे। हाँ, तुकाराम महाराज उसके ये एक्चुअली अभंग जो है वो ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा है, लेकिन तुकाराम महाराज उसके मूर्तिमंत स्वरूप थे। वो वैष्णवों के लिए बहुत कोमल थे लेकिन ढोंगी लोगों के लिए बहुत कठोर थे। तो इस तरह से तुकाराम महाराज जी और हमारा जो संप्रदाय है हरे कृष्ण संप्रदाय, इनकी शिक्षा बहुत मिलती जुलती है। और विशेष बात यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न में तुकाराम महाराज को दीक्षा दी थी। तुकाराम महाराज अपने अभंग में लिखते हैं, चैतन्य देव ने मुझे स्वप्न में आकर हरिनाम दीक्षा दिया। बहुत सुंदर वर्णन है उसका। तो चैतन्य महाप्रभु का समय जो था वो 1486 to 1538 तक था, लेकिन तुकाराम महाराज का जो समय है वो 1620 से लेके कुछ साल था, मतलब 50-60 साल। तो 150 साल के बाद में तुकाराम महाराज आए हैं, लेकिन तुकाराम महाराज को अपने जीवन में स्वप्न में आकर चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दिया। इसलिए तुकाराम महाराज की जो शिक्षा है, जो उन्होंने सिखाया हुआ है, वो एग्जैक्टली महाप्रभु चैतन्य की शिक्षा जैसा ही है। सेम वैष्णव प्रिंसिपल, भगवत भक्ति, शुद्ध भक्ति, कृष्ण प्रेम, पांडुरंग प्रेम और भगवान के नाम पर और श्रद्धा, यही उनका जीवन का ब्रीद था। वही चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में लोगों को सिखाया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि कुछ समय के लिए क्यों ना हो, लेकिन हम एक घंटे के लिए क्यों ना हो, तुकाराम महाराज जैसे श्रेष्ठ संत के भूमि पर हम लोग आए हैं, जिसके चरण स्पर्श से ये भूमि पावन हो गई है। इंद्रायण नदी के प्रवाह से ये भूमि पावन हो गई है। तुकाराम महाराज के भंडारा, भामनाथ और गोराडेश्वर पर्वत पे कीर्तन करके पर्वत पावन हो गए हैं। ऐसे पवित्र स्थान पर जहाँ पर हरिनाम, हाँ, राम कृष्ण हरिनाम का हमेशा गूंज उठता है नाम, उस भूमि पर हम लोग आए हैं। अनेक प्रकार के मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान के नाम का कीर्तन करने का जो मार्ग है वो सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसे कहा गया है कि जब संत लोग किसी जगह पर बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो आसमान में अनंत काल के लिए, चिरंतन काल के लिए वो नाम का प्रभाव रहता है। वो सब जीव चले जाते हैं जो नाम लेते हैं, लेकिन उन्हें लिया हुआ नाम जो है उसका परिणाम आसमान में सब जगह रहता है। और जो जो जीव हमारे जैसे बाहर से यहाँ पर आते हैं, उन लोगों को न जानते हुए भी उस नाम के प्रभाव का जो लाभ है वो प्राप्त होता है। मतलब इन इंग्लिश, द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ द कीर्तन ऑफ द होली नेम इज ऑलवेज देयर इन द इथॉस, इन द कॉस्मॉस, इन द एटमोस्फियर। इवन आफ्टर द सेंटली पीपल गो अवे आफ्टर चैंटिंग द होली नेम एंड डूइंग कीर्तन, दे गो अवे, बट द होली नेम रिमेन्स इन द ईथर, इन द वाइब्रेशन। एंड देन पीपल लाइक अस कम फ्रॉम आउटसाइड एंड वी डोंट नो, और वी नो और वी डोंट नो, स्टिल वी रिसीव द बेनिफिट ऑफ द होली नेम दैट हैज बीन चैंटेड बाय द ग्रेट सोल्स। दैट इज वाई वी कम हियर। वी विल नॉट सी तुकाराम महाराज हियर टूडे, बट वी आर ऑल गेटिंग बेनिफिट ऑफ हिज प्रेजेंस, ऑफ द होली नेम दैट ही चैंटेड एंड द इंस्ट्रक्शन दैट ही गेव। इसलिए हम लोग सब लोग थके हुए हैं, हाँ, भोजन करने के बाद में, लेकिन फिर भी हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे आत्मा में उस हरि नाम का लाभ हमको प्राप्त हो रहा है। और हमें भी यहाँ पर आकर, क्या हम लोग पिकनिक बनाने के लिए नहीं आए हैं? पिकनिक भी आनंद मिल रहा है हमको, ऐसे नहीं मिल रहे, पिकनिक तो आनंद भी मिल रहा है, लेकिन मुख्य उद्देश्य यह है कि जीवन में हमारा सब कर्तव्य निभाते हुए हमको भगवान के नाम में रुचि पैदा करनी चाहिए, भगवान के नाम के जप करने की विधि में अपने आप को शरणागत करना चाहिए। ये जीवन का उद्देश्य है, चाहे हम किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, भाषा से हो, किसी भी देश से हो, लेकिन फिर भी ये जीवन जो है ये भगवान के नाम में रुचि पैदा करने के लिए है। इस नाम के विषय में रुचि उत्पन्न होना चाहिए, इसलिए तुकाराम महाराज ने बहुत कष्ट सहन किया ताकि लोगों को इसके प्रति आदर और रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। नहीं तो तुकाराम महाराज अपना संसार करते थे, दुकान भी चला रहे थे बढ़िया से, क्या तकलीफ था उनको, उनके बच्चे बालक थे, दुकान था, धंधा अच्छा था, इनकम भी अच्छी हो रही थी उनकी, सब उनसे खुश भी थे, अच्छे दाम में अनाज बेचते भी थे और अपना भजन भी करते थे, कोई जरूरत नहीं थी उनको अपना निजी जीवन छोड़ के दूसरों के लिए प्रचार करने के लिए निंदा और कष्ट और षड्यंत्र का सामना करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन संत लोग जो है वो केवल स्वार्थ देखते नहीं है कि मेरा उद्धार हो जाए, बाकी किसी का कुछ भी हो जाए, मैं भजन कर रहा हूँ मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, बाकी लोगों को हो या ना हो मुझे मतलब नहीं उससे। संत लोग ऐसे नहीं होते, संत लोग जो है वो स्वार्थ के साथ में परमार्थ भी करते हैं। जब मेरा उद्धार हो रहा है वो साथ साथ में सबका उद्धार होना चाहिए, इसलिए वो प्रचार करते हैं। प्रचार का मतलब ये नहीं कि मैं हरे कृष्णा हूँ तो आप भी हरे कृष्णा बनना चाहिए, ये प्रचार का मतलब नहीं होता है। प्रचार मतलब ये होता है कि अगर मुझे भगवान की प्राप्ति हो रही है तो वो सबको होनी चाहिए। अगर मुझे भगवान के नाम से आनंद प्राप्त हो रहा है, शुद्धि प्राप्त हो रही है, पवित्रता प्राप्त हो रही है, मेरे जीवन का उद्धार हो रहा है, मुझे मुक्ति मिलेगी, तो इस पर संत जो है वो शांत नहीं बैठता है। वो चाहता है कि जो जो व्यक्ति मेरे सामने आ जाए उस व्यक्ति को उस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए जिसका लाभ मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए तुकाराम महाराज अपने जीवन में सुखी होने पर भी उन्होंने इतना लोगों का षड्यंत्र का सामना किया, वेश्या और वो ढोंगी लोगों का जो षड्यंत्र है। क्यों? कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूँगा सब चीज़ को, लेकिन मैं गरीबों के लिए भगवान का नाम दूंगा, ताकि उनके जीवन में भगवान का नाम प्रवेश करेगा तो उन सबका उद्धार हो जाएगा। इसलिए आज क्या हुआ है, आज जो उन्होंने कष्ट सहा हुआ है वो इतिहास में गया है, लेकिन उसकी वजह से जो लाभ हो रहा है लोगों को, वो उनके जाने के 400 साल के बाद में भी लोगों को उसका लाभ हो रहा है। दैट इज सेंटली पर्सनैलिटी। हाँ, केवल उनके जीवन में नहीं, उनके जीवन के बाद में आज तक तुकाराम की गाथा लोग पढ़ते हैं, गाथा और तुकाराम ने दिया हुआ भगवान का नाम लोग गूंज लेते हैं, कीर्तन करते हैं और उनके नाम के संप्रदाय का प्रचार आज भी पूरे महाराष्ट्र भर में हो रहा है। उनको जाके 400 साल हो गए, लेकिन वो सच्चे संत होने के नाते उनका प्रभाव आज भी हमको इतने साल के बाद में देखने को मिलता है। संत का यही लक्षण है, संत जब जाता है तो जाने के बाद में जब था उससे भी अधिक प्रचार करता है, जाने के बाद, हाँ, मरने के बाद में ज़्यादा प्रचार करता है। जीसस क्राइस्ट जब थे उनका भी जीवन ऐसा ही था, बहुत कष्ट हुआ उनको, बहुत कठिनाई हुई, इतनी कठिनाई हुई कि उनको उन लोगों ने क्रॉस पे चढ़ाया, मार दिया उनको पूरा, हाँ, लेकिन जब वो गुजर गए और अपने कब्र से वापस लौट के आए उसके बाद में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार हुआ है, उनकी शिक्षा का प्रचार हुआ है। तो त्याग जो है ना बहुत ज़रूरी है, बिना त्याग के भगवान के विषय में हम प्रगति नहीं कर सकते। सब संतों ने अपने जीवन का निजी स्वार्थ, निजी आनंद को त्याग करके लोगों के उद्धार के लिए मेहनत किया है, इसलिए उनके त्याग की वजह से हम सब लोगों का उद्धार होता है। हम लोग सब लोग संत के कृपा प्रसाद के लाभार्थी हैं, वी आर ऑल द बेनिफिशरीज ऑफ द फ्रूट ऑफ द सेंटली पीपल्स गिफ्ट टू अस। वो अपनी मेहनत से भगवान के नाम का जो फल है वो हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए आज हमको जो भगवान के नाम की प्राप्ति हुई है ये सभी संतों का कृपा प्रसाद है हमारे लिए। उस 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट, उसके बाद में मोहम्मद, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं आए हैं, तुकाराम महाराज आए हैं, ज्ञानेश्वर महाराज आए हैं, सब लोगों ने जो मिलकर प्रचार किया है, खुद जो कष्ट सहन किया है फिर प्रचार किया है, उसका प्रसाद हमको आज मिल रहा है। इसलिए हम भगवान के नाम का भजन कर सकते हैं, इसलिए हम तुकाराम महाराज के बहुत ऋणी हैं कि उनके श्री क्षेत्र देहू में उन्होंने हमको प्रवेश दिया, हाँ, कीर्तन करने को मौका दिया, बैठने को मौका दिया, इस भूमि पर कदम रखने का मौका दिया। तभी हम जाएंगे वहाँ पर बहुत ही वैभव से और गौरवशाली तरीके से कीर्तन करते हुए, उनको लेने के लिए गरुड़ जी आए, और विमान पर बैठकर वो वैकुंठ चले गए भगवान के धाम में, उस जगह का दर्शन करेंगे, वहाँ पर भी प्रणाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे हमें भी ऐसी बुद्धि देना। हाँ, जब भगवान का बुलावा आता है तो हम लोग ये नहीं कह सकते भगवान दो मिनट रुको जरा, थोड़ा बच्चों को संभाल के आता हूँ, थोड़ा खिला पिला के आता हूँ। अवड़ा भाई को पुकारते रहे हो, अवड़ा भाई चलो चलो चलो, अवड़ा भाई कहते आ रही हूँ आ रही हूँ। उनको लगा कि हमेशा बोलते हैं ऐसे, अभी आज भी बोल रहे हैं, सत्य लगा उनको। फिर जब वो भाग भाग के आई तभी वो आकाश में ऊपर जा रहे थे और उनकी पत्नी यहीं रह गई और वो चले गए। देख रहे, अरे उनको लगा, मुझे लगा कि सच नहीं है ये, वो पुकार रहे हैं, उनको बोल रहे हैं आओ आवड़ी आ जाओ, वैकुंठ से विमान आया है। तो उनको लगा क्या मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं आई समय पर, घर का काम करती रही। लेकिन जब आई, क्योंकि लोगों ने कहा अरे आवड़ी जल्दी आ जाओ, लोग जमा हो गए, वो गए निकल के, तो उनको लगा देखो क्या हो गया, तो आए देखे तो वो तो आकाश में ऊपर पहुंच गए थे, दूर दिखाई पड़े, कीर्तन करते करते जा रहे हैं। बहुत दुखी हुई, वैसे बहुत एकनिष्ठ पत्नी थी वो, बहुत कठोर वचन बोलती थी, लेकिन उनकी उनके प्रति बहुत एकनिष्ठ थी। कभी भी उनके भोजन किए बिना एक धान्य का कण भी खाती नहीं थी वो। कहाँ कहाँ जंगल में जाते थे, भजन में ब्रह्मांड होकर बैठते थे, कभी कहाँ बैठे कभी पता नहीं है, उनको ढूंढ ढूंढ के धूप में निकालती थी वो, पत्थर को कान में लगा लगा कर उनको ढूंढ के निकालती थी, उनको रोटी खिलाकर फिर खुद रोटी खाती थी। जब उन्होंने उपवास किया तो खुद उसने भी उपवास किया, बच्चों ने भी उपवास किया, ऐसी एकनिष्ठ पतिव्रता पत्नी थी वो। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को अपना अपना भगवान का रास्ता जो है खुद चलना पड़ता है। पति भक्त होगा, पत्नी भक्त होगी, लाभ तो होता है, लेकिन भगवान के घर हमें खुद जाना पड़ता है। हाँ, कोई बोनस पास नहीं मिलता है उसके लिए, खुद को। जैसे एग्जाम होते हैं ना, एग्जाम हम क्लास में पढ़ाई करते हैं, माता भी पढ़ाती है, भाई भी पढ़ाता है, सब पढ़ाते हैं हमको, लेकिन एग्जाम खुद को अकेले देना पड़ता है। एग्जाम हॉल में किसी को लेके नहीं बैठ सकते हम, बड़े भाई को और टीचर को और हमारे ट्यूशन टीचर को बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते। वैसे ही भगवान के भक्ति के मार्ग में खुद आगे जाकर खुद पास होना पड़ता है, उसमें खुद की परीक्षा खुद देनी पड़ती है। तो तुकाराम महाराज ने बुलाया लेकिन वो आ नहीं पाई, तो फिर गए निकल गए। समय इम्पोर्टेंट है बहुत, यू कैन नॉट मिस द टाइम। हाँ, टाइम कम्स यू हैव बी अवेलेबल, यू कैन से आई विल कम आफ्टर 5 मिनट्स, चांस विल गो। इसलिए अभी हम तुकाराम महाराज के यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, हमको बहुत गहराई से इस बात पर सोचना चाहिए कि हमें इसी जीवन में भगवान के नाम में परिपूर्णता प्राप्त करनी है। हाँ, बूढ़े होंगे, जवान होंगे, कोई नई नई शादी हो गई होगी किसी की, कोई उसकी होने वाली होगी, किसी को हो गए दो बच्चे हो गए होंगे, कोई जवान उम्र में है, बड़े उम्र में, छोटे उम्र में है, लेकिन सभी लोगों के जीवन का उद्देश्य एक है कि इसी जीवन में भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करके उनके धाम में जाना है, यही जीवन में करना है। हम बोलेंगे बहुत बिजी है, कोई बोलेंगे हम टीचर हैं, कोई बोलेंगे हम और कुछ है, हमारा काम बहुत बिजी रहता है, हमको टाइम नहीं मिलता है, इससे काम नहीं चलेगा। मृत्यु के समय पर कोई काम नहीं कर सकता है, हम बोलेंगे कि हमको 8 आवर की ड्यूटी है, अभी थर्ड शिफ्ट जाना है मुझे भक्ति हॉस्पिटल में, मृत्यु आ रही है, उसको बोले नहीं वेट में करो, ड्यूटी करके आने दो, ऐसा नहीं होता है। जब वो आती है तो सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, यहाँ का पैसा, परिवार, जॉब, ड्यूटी, कर्तव्य, सब छोड़ना पड़ता है, इच्छा न होते हुए भी जाना पड़ता है यमराज के साथ। तो उस समय पर जो भगवान की याद करेगा उसको यमराज नहीं दिखेंगे, उस समय यमराज नहीं आएंगे उसके लिए। उसके लिए जैसे गरुड़ जी आए थे वैसे गरुड़ जी पर बैठकर विष्णु के दूत आएंगे, भगवान के मैसेंजर आएंगे और वो उनको भगवान के पास लेके जाएंगे। यमराज किसके लिए आते हैं? यमराज पाप करने वाले लोगों को दंड देने के लिए उनको लेने के लिए आते हैं, और जो भगवान के भक्त हैं, यमराज ने अपने दूतों को ऑर्डर दे के रखा है कि जहाँ मेरे भक्त हैं और जहाँ भगवान का नाम का कीर्तन होता है वहाँ पर आपको एंट्री करने को परमिशन नहीं है। यमदूत वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं जहाँ भगवान के नाम का जप होता है। अगर आपको यमराज से डर है और यमदूत से आप डरते हैं तो आपको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, तो उस जगह पर यमदूत प्रवेश नहीं कर सकता है, उस जगह केवल आपके मृत्यु के समय भगवान के दूत आएंगे और बड़े प्रेम से और सम्मान के साथ में हमको उसके धाम में ले जाएंगे। सो ये तुकाराम महाराज का शिक्षा है, तुकाराम महाराज ने जीवन भर यही किया है, हमको भी प्रेरणा दे रहे हैं, हमको भी वही करना है। हरे कृष्णा। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर होली होने के बाद में दो दिन के बाद फाल्गुन वद्य द्वितीया के दिन तुकाराम बीज नाम का उत्सव यहाँ पर मनाते हैं। वो उसका मतलब यह है कि इसी दिन तुकाराम महाराज वैकुंठ में गए थे होली के दो दिन बाद। तो उस दिन की याद में फाल्गुन महीना मतलब होली के दो दिन बाद यहाँ पर तुकाराम बीज नाम का उत्सव होता है। सब लाखों लोग उस पिंपल के पेड़ के नीचे अश्वत्थ पेड़ मतलब पीपल का वृक्ष जो है उसके नीचे जमा होते हैं और हरि कीर्तन करते हैं उस घटना की याद में तुकाराम महाराज के गौरव में। और ज्येष्ठ महीने में तुकाराम महाराज की पालकी यहाँ से निकलती है और दशहरे के दिन दोबारा निकलती है। अभी भी है और हर एकादशी के दिन यहाँ पर बहुत भक्त लोग एकत्र होते हैं और कीर्तन करते हैं। और हमारा भी इस्कॉन मंदिर का देहू गांव में प्रोग्राम होता है, इसमें 50-60 लोग एकत्र होकर हर हफ्ते में एक बार यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं। जैसे निगड़ी में है वहीं के भक्त यहाँ पर आते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।
तुकाराम।